તારીખ 26/12/1992 શ્રી સમયસાર ગાથા 14 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 64
गाथा सूत्र से शुद्ध नहीं मैंने यहाँ शुद्ध नहीं के विषय भूत आत्म तत्व को इस गाथा सूत्र से कहते हैं। नए और नए के विषय को अभेद करके अभेद विवक्षा से ये कथन है कि शुद्ध नए को कहते हैं। वास्तव में तो शुद्ध नए के विषय को कहते हैं कि शुद्ध नए का विषय कैसा है। शुद्ध नए माने क्या कि जिस ज्ञान का अंश जिस श्रुत ज्ञान का अंश अपने शुद्धात्मा को जानने के लिए जिसका प्रयोजन है जिस श्रुत ज्ञान का अंश का प्रयोजन अपना शुद्ध आत्म स्वरूप को जानने का प्रयोजन रखता है उसको शुद्ध नय कहते हैं। ये शुद्ध नय की परिभाषा है और इसका नाम शुद्ध नय इसलिए रखा गया कि इसका जो विषय है वो शुद्ध आत्मा है। इसलिए ज्ञान के अनेक नय होते हैं, अनंत नय है ऐसे तो, क्योंकि अनंत गुण धर्म है उनको विषय करने वाला अनंत नय है और अपने विषय के अनुसार उन नयों के नाम है। जो वर्तमान पर्याय की अशुद्धता को जानने का प्रयोजन रखता है ऐसे श्रुत ज्ञान का अंश का नाम अशुद्ध नय भी है। प्रवचन सार में आता है 47 नय, उसमें 46वां अशुद्ध नय है। नय अशुद्ध होता है क्या कि नय न शुद्ध है न अशुद्ध है, वो तो एक ज्ञान का पर्याय है और जिसको वो जानता है उसी अनुसार उसका नाम रखा गया है आगम में। तो यहाँ पर शुद्ध नय द्वारा शुद्धात्मा कैसे जाना जाता है और जो शुद्धात्मा जाना गया वो कैसा है ऐसे शुद्धात्मा का विवरण इस 14 गाथा में आचार्य महाराज कहेंगे। जो पसदी अपाणम अवधपुठम अनुनयम नियदम अविशेषम असंजुतम तम शुद्ध नयम व्याणी ही गाथार्थ। जो ने आत्मा को बंध रहित और पर के स्पर्श रहित अन्यत्व रहित चलाचलता रहित विशेष रहित अन्य के संयोग से रहित ऐसे 5 भाव रूप से देखता है उसे ही शिष्य तुम शुद्ध नहीं जान। उस आत्मा को यहाँ शुद्ध नहीं कहने में आया है अभेद विवक्षा से। क्या कहा कि जो श्रुत ज्ञान का अंश नहीं मैंने शुद्ध ज्ञान का अंश आत्मा को बंध रहित जानता है अबंध स्वभावी बंध रहित मैंने अबंध स्वभावी जानता है कि जिसको कर्म बंधन 3 काल में नहीं है ऐसा एक आत्मा का मूल स्वरूप है जिसको तीन काल में कर्म बंधन नहीं है, और उसको देहादि नौकर्म का परमाणु का भी स्पर्श नहीं है, बंधन भी नहीं है और स्पर्श भी नहीं है। एक क्षेत्रावगाह तो है, एक क्षेत्रावगाह होने पर भी उसको स्पर्श नहीं है। स्पर्श नहीं है तो बंधन होने का तो सवाल ही नहीं रहता। फुद्गल परमाणु आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते, क्यों कि स्पर्श तो स्पर्श गुण की पर्याय होवे वहां होता है। स्पर्श गुण पुद्गल में है, जीव में तो स्पर्श गुण है ही नहीं, इसलिए आत्मा को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। आत्मा किसी को स्पर्श नहीं कर सकता और आत्मा को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। हाँ, स्पर्श का ज्ञान आत्मा को होता है, आठ प्रकार का स्पर्श है, ठंडा गर्म स्निग्ध रुक्ष हल्का भारी आदि आठ प्रकार का स्पर्श है, उनको आत्मा जानता है लेकिन स्पर्श कर सकता नहीं है। थोड़ा प्रयोग से समझे इस बात को कि जैसे हमारी ये दो अंगुली है, वो आपस में हम स्पर्श से ऐसे जानता है कि यहाँ जो रेखाएं हैं उंगली पर तो रेखाएं होती है ना, तो इसलिए वो स्निग्ध नहीं है। क्या है? स्निग्ध नहीं है लेकिन करकरा जैसा हमारे यहाँ खरबछड़ा कहता है गुजराती में, तो ऐसा स्पर्श मालूम पड़ता है। अब प्रैक्टिकली देखिए कि आत्मा स्पर्शता है या आत्मा को स्पर्श का ज्ञान होता है, देख लीजिए जरा अनुभव करके। क्या सब बात अनुभव से हमें समझनी है, सिर्फ विचार से नहीं समझनी है, लेकिन ये सब भाव अनुभव में आते हैं तो अनुभव से सब बात समझनी चाहिए कि ये स्पर्श ऐसा ऐसा लगता है तो वहाँ कुछ रेखाएं हैं, जैसा यहाँ स्निग्ध है वैसा वहाँ नहीं है। तो हमें ज्ञान होता है या हमें स्पर्श होता है, हमें क्या होता है? ज्ञान होता है, ज्ञान में स्पर्श नहीं, स्पर्श में ज्ञान नहीं। दो अंगुली का आपस में स्पर्श है क्योंकि दोनों में पुद्गल में स्पर्श गुण है, वो स्पर्श कर सकता है, पुद्गल पुद्गल स्पर्श कर सकता है, जीव पुद्गल का स्पर्श होता नहीं है, उसको ज्ञान होता है स्पर्श का। तो आत्मा है उसको बंधन नहीं पुद्गल का और उसको स्पर्श भी नहीं है। संयोग क्षण द्रव्य का अनादिकाल से है, जहाँ आकाश है वहीं धर्मास्तिकाय है, वहाँ भी अधर्मास्तिकाय है, वहाँ कालाणु है, वहाँ पुद्गल है, वहाँ जीव है। एक क्षेत्र पे क्षण द्रव्य होने पर भी एक दूसरे का स्पर्श होता क्योंकि पांच तो अरूपी है, अरूपी को स्पर्श गुण होता नहीं है, इसलिए आत्मा को कर्म का बंधन नहीं और पुद्गल परमाणु का कोई स्पर्श होता नहीं है। अन्यत्व रहित है, अन्य अन्यपना जो है अवस्था में वो मूल स्वरूप में नहीं है, मूल स्वरूप अनन्य है। मूल शब्द तो अनन्य, उसका अर्थ क्या है? अन्यत्व रहित, अनन्यकम ऐसा लिया है। अन्य मैंने दूसरा दूसरा, अनेरा अनेरा, और अनन्य मैंने एक रूप जिसमें दोपणा नहीं है, ऐसा एक रूप मूल स्वभाव है। शुद्ध नहीं का विषयभूत जो स्वभाव है वो एक रूप अनन्य है। चला चलता रहित, उसमें चल अचलपणा है, नियतम क्षेत्र से यह बात लिया है कि अपना जो असंख्य क्षेत्र है वो नियत असंख्य क्षेत्र ही, असंख्य प्रदेशात्मक जो क्षेत्र है वो उतना ही रहता है। छोटा मोटा दिखता है, हाथी का क्षेत्र बड़ा दिखता है आत्मा का, मनुष्य का छोटा दिखता है, फिर भी सभी आत्माओं का असंख्य प्रदेशात्मक क्षेत्र है। जितना लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने प्रत्येक आत्मा के प्रदेश हैं, अगर लोकाकाश के एक प्रदेश पर आत्मा का एक प्रदेश रखा जाए तो सब ब्रह्मांड में पूरी एक आत्मा अवस्थित हो जाए उतने आकार में, जो केवल समुद्गत में होता है, लेकिन एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में अवगाहित होते हैं, अवगाहन को प्राप्त करते हैं, तब ये संकोच को प्राप्त होकर के छोटा क्षेत्र दिखता है। ऐसे नियत नियत मैंने चला चलता रहित है, विशेष रहित है, मैंने गुण भेद इसमें नहीं है। क्या विशेषता? मैंने गुण भेद इसमें नहीं है। आत्मा तो भेदा भेद स्वरूप है ऐसा कहते हैं, अनंत गुण का पिंड है ऐसा कहते हैं, को व्यवहार नहीं है। यहाँ बात शुद्ध नहीं की चलती है, निश्चय नहीं की चलती है। निश्चय नहीं से आत्मा अभेद आत्मा में भेद नहीं है। जो आत्मा का अभेद स्वरूप है, अभेदता में भेद नहीं है, अभेद अभेद ही है। ऐसे विशेष रहित है, अन्य के संयोग से रहित है, रागादि भाव का संयोग भी उसको नहीं है। व्यवहार से अवस्था में रागादिक है, व्यवहार से निश्चय से मूल स्वरूप में रागादि नहीं है।
निश्चय अनंत गुण स्वीकार नहीं करता।
वो व्यवहार नहीं स्वीकार करता है, निश्चय नहीं स्वीकार करता है। हाँ, अवतार बताया है, इसलिए अवलंबन का विषय अभेद आत्मा है, अवलंबन का विषय गुण भेद रूप आत्मा नहीं है, ऐसा है। ये परमार्थ का विषय है, परमार्थ में तो ऐसा ही है कि अभेद में भेद पाया जाता नहीं है। जहाँ तक अभेद में भी भेद मालूम पड़े, वहां तक अभेद अच्छी तरह मालूम पड़ता नहीं, ठीक तरह नहीं मालूम पड़ता। दोनों बात करेंगे, आचार्य महाराज तो टीका में व्यवहार की भी बात करेंगे और निश्चय की भी बात करेंगे। कुंदकुंद भगवान ने तो मूल गाथा में निश्चय की ही बात की है, व्यवहार की बात की नहीं। लेकिन टीकाकार आचार्य महाराज ने कृपा कर दी के व्यवहार से भी आत्मा कैसा है वो साथ साथ में दिखा दिया, वो भी दर्शाया, इसलिए बताया कि कोई एकांत कर सके नहीं। इसलिए ऐसे पांच भाव रूप से देखता है, मैंने पांच भाव का एक स्वरूप, पांच भाव का मतलब क्या? पांच भेद नहीं, पांचों का भी जो अभेद है, ऐसे आत्मा को जो देखते हैं उसे ये शिष्य तो शुद्ध नहीं जान, ऐसे आत्मा को जानने वाला ज्ञान को तुम शुद्ध नहीं जानना और उसके विषय को शुद्ध आत्मा जानना, ये शब्दार्थ हुआ। टीका कहते हैं, निश्चय से अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध नहीं है और वह अनुभूति आत्मा ही है। इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है, क्योंकि आचार्य महाराज ने नए और निर्णय के विषय को अभेद करके अभेद विवेकता से ही गाथा में कथन किया है। तो यहाँ शुद्धात्मा और शुद्धात्मा को अनुभव करने वाला शुद्ध नए दोनों को एक ही बताया है, दो बताया ही नहीं उसमें, क्योंकि वहाँ द्रव्य पर्याय का दो रूप से अनुभव नहीं है। अनुभूति में दो अनुभव नहीं होता है कि मैं ये पर्याय अनुभव करती है और अनवलंबन का विषय शुद्ध अक्रिय निष्क्रिय है, ऐसा दो भेद उसमें उत्पन्न होता नहीं। फिर से निश्चय से मैंने वास्तव में, निश्चय का अर्थ क्या होता है कि वास्तव में परमार्थ रूप से, वास्तव में मैंने परमार्थ रूप से, मैंने आत्मा का मूल स्वरूप ऐसा है कि वो अबद्ध है, अस्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असंयुक्त है, जैसा कि शब्दार्थ में अपने संक्षेप में शब्द का अर्थ किया। ऐसे आत्मा की अनुभूति को शुद्ध नहीं कहते हैं, ऐसे आत्मा के विकल्प को हम शुद्ध नहीं कहेंगे। क्या फर्क है? ऐसे आत्मा को, आत्मा के विकल्प को भी शुद्ध नहीं कहेंगे, और ऐसे आत्मा की जानकारी वाला ज्ञान को भी हम शुद्ध नहीं कहेंगे। क्योंकि जो विद्वत लोग हैं, जिनको ज्ञान का सूक्ष्म है, ऐसे विद्वान तो शास्त्र से समझ लेते हैं कि आत्मा ऐसा है, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत विशेषण संयुक्त आत्मा है, वो तो अच्छी तरह जान लेता है और मुखाग्र मुखपाठ भी कर लेते हैं, गाथा की गाथा 415। लेकिन यहाँ अनुभूति को शुद्ध नहीं कहा है, सिर्फ जानकारी करने वाला ज्ञान को शुद्ध नहीं कहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुमुक्षु को भी जानकारी होती है, विद्वानों को भी जानकारी होती है, कहीं ऐसा नहीं मान लें कि जानकारी हुई इसलिए ज्ञान हो गया। अनुभूति से ज्ञान होता है, सिर्फ जानकारी से ज्ञान नहीं होता है, ये ध्यान में रखने लायक है। ये ब्रह्मा होता है इसलिए कि पहले ऐसी बात नहीं जानते थे कि आत्मा कैसा है। पहला तो देह वाला राग वाला जो अनुभव में आता है, ऐसा ही आत्मा को जानते थे। अब शास्त्र पढ़ने से या सुनने से हमें पता चला कि आत्मा तो अबद्ध स्पष्ट है। जब ऐसा पता चला तो ज्ञान हो गया क्या? नहीं, ज्ञान नहीं हुआ है, तो जानकारी हुई है। अनुभव ऐसा हुए अपनी आत्मा का तब ज्ञान हुआ, ऐसा मानना चाहिए। मतलब अनुभव ज्ञान को ही यहाँ पर आत्मज्ञान कहते हैं, सिर्फ विचार ज्ञान को आत्मज्ञान नहीं कहते। ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध नहीं है, इस अनुभूति को शुद्ध नहीं कहते हैं, और इस अनुभूति को आत्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दो बात कही, अनुभूति को शुद्ध नहीं भी कहते हैं, वो वास्तव में है, और इस अनुभूति को आत्मा भी कहते हैं। देखिए, पर्याय को आत्मा कह दिया, अनुभूति तो पर्याय है, उनको आत्मा कहा। क्यों? कि वो आत्माकार परिणाम है, आत्माकार पर्याय है, आत्मा जैसा है बस उस ठीक उसी सदृश अवस्था हो गई, जैसा शुद्धात्मा है ऐसी ही शुद्धात्मा की अवस्था अनुभूति की है, इसलिए अनुभूति को ही हम आत्मा कहेंगे। यहाँ पर तो थोड़ा और भी तात्पर्य है कि आचार्य भगवान 15 गाथा में पीछे आने वाली जो गाथा है उसमें श्रुत ज्ञान की विधि जो है, आत्मानुभव की अनुभूति की जो विधि है, उनको कहना चाहते हैं। क्या? हाँ, ये विधि का विषय चल रहा है, ये अनुभूति का विषय चल रहा है। और विधि क्या है, किस विधि से, किस कार्य पद्धति से अनुभूति होती है, वो 15वीं गाथा में कहेंगे। तो ये विधि है, वो पर्याय का विषय है, इसलिए यहाँ पर्याय को आत्मा बता दिया। 15 गाथा में तो ये कहेंगे श्रुत ज्ञान ही आत्मा है। देखिए, पीछे की गाथा में श्रुत ज्ञान ही आत्मा है, यहाँ अनुभूति को आत्मा कहा, वहाँ श्रुत ज्ञान को आत्मा कहेंगे। हाँ, इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की, क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। दूसरी पंक्ति टीका के, क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। श्रुत ज्ञान तो ज्ञान के 5 भेद है, उसमें से एक भेद है, और उसकी जो भी एक अंशरूप पर्याय है शुद्ध नहीं। अनुभूति है, वहां तो ये श्रुतज्ञान स्वयं आत्मा ही है, ऐसा कहते हैं। ज्ञान है सो आत्मा है, आत्मा है सो ज्ञान है, ऐसा ले लेते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही आत्मा पहचाना जाता है और ज्ञान से ही आत्मा स्वसंवेदन से अनुभव में आता है। પર્યાય અને દ્રવ્ય ની અભેદતા કરી દીધી ત્યાં, પર્યાય ભી એક દ્રવ્ય કા અંશ હોને સે, ક્યા પદાર્થ કા એક અંશ હોને સે, તો द्रव का अंश होने से द्रव की प्रधानता से वहां देखते हैं, पर्याय को द्रव की प्रधानता से देखते हैं, ऐसी पद्धति है वहां। जैसे लक्षण को देखने से लक्ष्य का पता चलता है, तो वहां भी अभिन्न विवक्षा ली थी कि द्रव रूप से तो दोनों एक ही है, द्रव और द्रव का अंश वो वस्तु रूप से एक ही है। जैसे एक वृक्ष है, उसकी एक शाखा है, वो वृक्ष है या वृक्ष से कुछ दूसरी चीज है? शाखा में भी वृक्षत्व है, पूरा वृक्ष में वृक्षत्व होने से शाखा में भी वृक्षत्व है कि नहीं है? शाखा में भी वृक्षत्व है, तो उस ढंग से देखते हैं, शाखा को शाखा नहीं देख करके वृक्ष के रूप में देखते हैं, ऐसा देख सकते हैं। प्रयोजन की सिद्धि है उसमें, इसलिए क्यों कि इससे प्रयोजन की सिद्धि है। थोड़ी दूसरी विवक्षा है वहां, तो शुद्धात्मा से नहीं आलिंगित ऐसी शुद्ध पर्याय को आत्मा कहते हैं, अकेले पर्याय को आत्मा कहें, शुद्ध पर्याय को क्या अर्थाव बोध सामान्य, उसको नहीं आलिंगित, ऐसी शुद्ध पर्याय को आत्मा कहते हैं। तो वहां तो आत्मा का आनंद आया ना, उसको मुख्य करना है कि वही आत्मा है। अगर आनंद नहीं आया तो फिर आत्मा को जानने का प्रयोजन क्या? दुख का अभाव नहीं हुआ तो फिर कोई प्रयोजन की सिद्धि तो हुई नहीं, तो बस उतना आत्मा है। ऐसे आदमी कहते हैं कि संपत्ति कितनी भी हो लेकिन जितनी भोगने में आई उतनी अपनी, कितनी भोगने में आई उतनी, संपत्ति लाखों की करोड़ों की अरबों की हो सकती है लेकिन जितनी भोगने में आई उतनी अपनी। ऐसे आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण के अनंत पर्याय है, लेकिन जिस पर्याय को भोगी उतना ही संपत्ति के भोगने में आई, उतना आत्मा है बस, और उतनी विवक्षा है। यहाँ पर तो द्रव्य पर्याय दोनों लेते हैं कि ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध नहीं है और वह अनुभूति आत्मा ही है, आत्मा को अवलंबित होकर के आत्मा रूप हो गई और भाव में अभेदता को साधा, जो अभेदता सधती है उसको दिखाने के लिए कहते हैं कि वो अनुभूति ही आत्मा है, आत्मा ही है, ऐसा कहा। वो अनुभूति आत्मा ही है, संस्कृत में भी यही बात है, आत्मनो अनुभूति स्वशुद्धनयः सातु अनुभूति एव आत्मा, अनुभूति आत्मा एव, ऐसा लिया है, अनुभूति आत्मा एव, अनुभूति ही आत्मा है, वो आत्मा ही है। इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है, क्या कहा कि अनुभूति के काल में एक आत्मा ही प्रकाशमान है, दूसरा कुछ दिखता नहीं, जब अनुभूति होती है तो सारे जगत का विस्मरण हो जाता है। क्या? सारा जगत का विस्मरण हो जाता है, सब लाइनें कट जाती है। क्या? दिमाग में जितने भी अन्य अन्य पदार्थ से जो संबंध होता है वो सब लाइनें कट जाती है। ऐसा होता है, माने अनुभूति एक ऐसी स्वरूप की सावधानी है। 38 गाथा में क्या कहा कि समझने से सावधान हुआ, तो अनुभूति एक स्वद्रव्य में ऐसी सावधानी है कि जिस सावधानी के वशात सारा जगत का विस्मरण हो गया। जैसे मैं अकेला विश्व में हूं और कोई है ही, ऐसा हो जाता है। तो आचार्य महाराज ने इस भाव को ऐसा कहा कि इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है, इस प्रकार एक अकेला आत्मा हमें अनुभूति में प्रकाशमान है, हमारा आत्मा के अलावा हमें कोई दिखता नहीं है। शुद्ध नहीं आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग नहीं है, उनको यहाँ अलग देखने में नहीं आता। ये द्रव्य गुण पर्याय वाला भेद वाला ज्ञान है, विकल्प वाला ज्ञान है, उनको यहाँ अत्यंत गौण कर देना है, उसको यहाँ अत्यंत गौण कर देना। क्या? उसका प्रयोग मत करना इधर, जहाँ अनुभूति का विषय चले वहाँ ये द्रव्य गुण पर्याय वाला विकल्प वाला भेद वाला ज्ञान का कोई प्रयोग नहीं करना है। जैसे हम कसौटी पे सोने को लगाए तब तो हम सब कितना अंश में सोना है कितना दूसरा है तांबा या चांदी ये सब देखेंगे, लेकिन सोना मैंने सोना वो अभेद ज्ञान हो गया। सोना शब्द से ही पूरा सोने का अभेद ज्ञान होता है, उसका भेद में जानने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है। अब शिष्य का यहाँ प्रश्न है कि ये आत्मा आपने ऐसा आत्मा कहा तो ऐसा आत्मा की अनुभूति मुझे कैसे हो, मेरा तो ये प्रयोजन है। यानी आपने आत्मा को दर्शाया, ये आत्मा तो बहुत महिमावंत आपने दर्शाया और अनुभूति की भी आप इतनी प्रशंसा करते हो, तो मुझे भी लालच होती है कि ऐसे आत्मा की अनुभूति मुझे कैसे हो। उसका समाधान यह है, आचार्य महाराज उसका समाधान कहते हैं कि बौद्ध स्पृष्टत्व आदि भाव ऐ भूतार्थ है, इसलिए यह अनुभूति हो सकती है। क्या है कि व्यवहार में के विषय भूत जो भी भाव है वो ऐ भूतार्थ होने से, जो बंधन का स्पर्श का अन्य अन्यपणा का भाव विशेष विशेष रूप भाव, ये जो पांच प्रकार के प्रतिपक्ष वाले भाव ले ले में जो व्यवहार नहीं का विषय है, ऐसी अनुभूति अभेद की अनुभूति हो सकती है। एक आगे सातवीं गाथा चल गई है उसमें वो बात लिया है कि आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। वास्तव में तो आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद नहीं है, लेकिन अभेद को अच्छी तरह दिखाने के लिए क्या कहेंगे कि आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र ही नहीं है, ऐसा कहा है। क्या? भेद नहीं है ऐसा नहीं कह करके उसको दर्शन ज्ञान चारित्र है ही नहीं, हम तो आत्मा को आत्मा के रूप में देखते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र के रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि ये व्यवहार हो गया है और व्यवहार नहीं से अनुभूति होती ही नहीं। निश्चय नहीं में अनुभूति होती है, शुद्ध नहीं में अनुभूति होती है, व्यवहार नहीं में अनुभूति होती नहीं है। हाँ, तो मोक्ष मार्ग की बात चली। यहाँ तो कहते हैं कि आत्मा कैसा है, क्या यहाँ आत्मा की बात चल रही है, मोक्ष मार्ग की नहीं, आत्मा की बात चल रही है कि आत्मा है। उसमें ऊपर कहे तो ऐसे जो पांच भेद है वो है ही नहीं, वो अभूतार्थ। मैंने अभूतार्थ का मतलब क्या, भूभाव टू बी, होना, तो भूति मैंने होना कि है ही नहीं, अभूतार्थ मैंने है ही नहीं। आत्मा कैसा है कि जिसमें ऐसे कोई भेद नहीं है, ऐसा है, भेद का अभाव वही अभेद, वही अभेद। तो सातवीं गाथा में भावार्थ में जयचंद जी ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है, गुरु को बहुत पसंद आया था वो बात। भावार्थ में लेना, भावार्थ के दूसरा पैराग्राफ। यहाँ कोई कह सकता है कि पर्याय भी द्रव्य के ही भेद हैं और वस्तु नहीं, पर्याय भी द्रव्य के भेद हैं और वस्तु नहीं, तो फिर उन्हें व्यवहार कैसे कहा जाता है? वो तो वस्तु का अंग होने से निश्चय कहना चाहिए उसको। तो आपने उसको व्यवहार कह करके अभूतार्थ में क्यों डाला? तो ठीक है भैया, उसका समाधान यह है कि यह ठीक है। क्या कहा? पहला ये बात कहा कि यह ठीक है, तो ठीक मैंने क्या कि आगम पद्धति में वो बात है, क्या जो द्रव्यानुयोग के आगम है, उस द्रव्यानुयोग के आगम की पद्धति से देखे तो पर्याय ही द्रव्य का ही, द्रव्य का अंग है, क्या द्रव्य का भेद है, द्रव्य का अंग है, लेकिन अध्यात्म में वो बात नहीं है, आगम में है, अध्यात्म में नहीं है वो बात।
आगम
नहीं, विरुद्धता नहीं है। आगम से अध्यात्म का विषय परे का है, क्या इसका लेवल और इसका लेवल अलग अलग है। जैसे कोई हवाई जहाज 1000 फीट पर उड़ता है और कोई हवाई जहाज 50,000 फीट पर उड़ता है, तो दोनों का लेवल अलग अलग है। जब दोनों का लेवल ही अलग अलग है तो फिर एक दूसरे का स्पर्श होता नहीं है, बीच में बहुत गैप है, क्या
आगम किसको निश्चय कहता है, उसको व्यवहार कहता है।
हाँ हाँ, क्योंकि वो अलग लेवल की बात है। जैसे हम नीचे से देखें तो 1000 फीट की बात जो है ऊंचाई वाली है, लेकिन ऊपर से देखें तो वो नीचे वाली बात है, क्या ये अंगुली छोटी है कि बड़ी है, बताइए आप। कि हम यहाँ से देखें तो बड़ी है और यहाँ से देखें तो छोटी है, तो क्या विरोध हो गया क्या? छोटी और बड़ी में तो विरोध दिखता है, उसमें विरोध नहीं है। छोटी कहे तो भी विरोध नहीं, बड़ी कहे तो भी विरोध नहीं है, क्यों? क्या हमें अंगुली का ज्ञान जैसी जितनी है वैसे ही उतनी जानते हैं, इसलिए छोटी बड़ी कहने में कोई विरोध आता, उसको छोटू छोटी भी कह सकते हैं, उसको बड़ी भी कह सकते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं है, ऐसी बात है। तो भेद पे खड़े रहते हैं तो भेद मालूम पड़ता है, अभेद पे खड़े रहते हैं तो भेद मालूम पड़ता नहीं, और अनुभूति अभेद में होती है, भेद में नहीं होती। ये तो कहेंगे यहाँ पर कि यह ठीक है, किंतु किंतु परंतु ये बात आ गई ना कि तो परंतु यहाँ द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रधान करके उपदेश दिया है। अभेद दृष्टि में भेद को गौण कहने से क्या उसका अभाव नहीं करते, उसको गौण कहने से ही अभेद भली भांति मालूम हो सकता है। अगर उसको गौण नहीं करे तो अभेद अच्छी तरह मालूम पड़ता नहीं। इसलिए भेद को गौण करके उसे व्यवहार कहा है। निश्चय होने पर भी, गुण भेद भी निश्चय होने पर भी गौण करके उसको व्यवहार कहने में आया है। क्यों, यहाँ अभिप्राय कौन सा रखा है, इस तरह से कथन करने में कौन सा अभिप्राय है कि यहाँ यह अभिप्राय है कि भेद दृष्टि में भी, भेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा नहीं होती और सरागी को तो भेद को जान करके विकल्प होते रहते हैं, वितराग को नहीं होता क्या? जो सर्वज्ञ केवल वितराग है उनको भेद को जानते हुए भी विकल्प नहीं होता, और जो छद्मस्थ है उसको भेद को जान करके विकल्प हो जाएगा उसको, इसलिए सरागी को विकल्प होते रहते हैं। इसलिए जहाँ तक रागादिक दूर नहीं हो जाते हैं, मैंने सरागी अवस्था नहीं मिटती है वहाँ तक भेद को गौण करके अभेद निर्विकल्प अनुभव कराया गया है। ये अभिप्राय से बात चलती है, ये अभिप्राय ख्याल में रखना। जयचंद जी ने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया है, गुरुदेव को बहुत पसंद आया है। देखो कितना अच्छा स्पष्ट, जो गाथा में स्पष्टीकरण नहीं मिलता है एक टीका में, वो पंडित जी ने दे दिया है। ऐसे बहुत से न्याय निकालते वो। अब जो गाथा चलती है बोले
विद्यमान,
हाँ है ही नहीं ऐसा कहते हैं। अभूतार्थ का मतलब क्या कि विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है तो वस्तु शून्य है क्या? अनंत गुण से भरी है या वस्तु शून्य है? क्योंकि तो भरी है अनंत गुण से, ऐसा अनंत गुण का दृष्टिकोण हम छोड़ देना चाहते हैं, गौण कर देना चाहते हैं, वो अनंत गुण की अभेदता भी है कि नहीं है? के अनंत गुण का अनंत भेद अलग अलग रहता है, तो भेद भी है और अभेदता भी है। अब भेद को गौण करके एक अकेली अभेदता को मुख्य करते हैं, यही अनुभव करने की पद्धति है। अनुभव करने में भेद है वो बाधक है क्या? भेद वाला ज्ञान स्वयं बाधक है, ऐसा होता है। उसका दृष्टांत भी लेते हैं कि जैसे हमने कोई बहुत अच्छा मिष्ठान बनाया, ये ठंडी के दिन में बनाते ना, आपके यहाँ भी बनाते होंगे, केसर डालते, मछली डालते, वो करते गूंद डालते, क्या क्या बहुत से मसाले डालते, गरम मसाले, हाँ सौंठ डालते, तेजाना, तजी, लविंग, सब बहुत से चीज़ें डालते ना, तो मैंने बहुत कीमती चीज़ होती है वो, तो जब डालते हैं उसको अच्छा अच्छा अपन करते हैं तब तो ये सब विचार करते हैं, फिर खाते वक्त इसका विचार करें तो खाने का आनंद टूट जाएगा। इसमें केसर उतना डाला है, घी उतना डाला है, ये मसाला उतना डाला है, ऐसा विचार करेंगे तो खाने का आनंद नहीं आएगा। जैसे जेवर पहनते हैं तो उसमें उसका विचार करते हैं कि हीरे इतने हैं, उसका वजन इतना है, उसकी कीमत उतनी है, उसकी चमक उतनी है, कुछ नहीं देखते, बस पहनने का अभेद भाव से आनंद लेते हैं। तो आनंद लेना है, सुखी होना है, उसको भेद का प्रयोजन नहीं है। तो शास्त्रकारों ने तो बहुत व्यवस्थित बात किया है, नए चक्र में वो बात लिया है जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बोला कि तत्व के अन्वेषण काल में ये युक्ति मार्ग से पदार्थ को जानो, तच्च अन्वेषण काले, द्रव है, गुण है, पर्याय है, कितने भेद है, वो है, वो है, वो है, नो आराधन समय, आराधन के समय नहीं। क्यों कि आराधन के समय तो आत्मा प्रत्यक्ष है, पथ को अनुभव धम्मा, आत्मा प्रत्यक्ष है, इसलिए उसका विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। नई चक्र में भी ये प्रत्यक्ष वाला मुद्दा आराधना के साथ आचार्य महाराज ने जोड़ दिया है। जहाँ आत्मा प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान में, प्रत्यक्ष ज्ञान में अनंत प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा प्रत्यक्ष होता है, वहाँ कोई विचार विकल्प की आवश्यकता अवकाश रहता
नहीं,
आवश्यकता भी नहीं और अवकाश भी नहीं। आप मेरे सामने बैठे हो तो मुझे विचार क्या करना आपका, आप तो प्रत्यक्ष है, आपको देखना है। ऐसे अनंत प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्षता का पिंड है। ज्ञान भी अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष हुआ अनुभूति के काल में, वहां विचार विकल्प के कोई अवकाश रहता नहीं है, कोई आवश्यकता भी रहती नहीं है। तो इसलिए वो बात छोड़ देनी है। भेद प्रभेद की बात तो पहचान करने के लिए काम में लेनी है, अनुभव करने के लिए काम में नहीं लेनी है। क्या कहा इधर के बद्ध स्पष्टत्व आदि भाव भूतार्थ हैं, इसलिए यह अनुभूति हो सकती है। बस स्पष्टत्व आदि भाव अभूतार्थ है ही नहीं, अभेद में भेद है ही नहीं, परमार्थ आत्मा में बद्ध स्पष्ट आदि भाव है ही नहीं, इसलिए ऐसा आत्मा होने से ऐसे आत्मा की अनुभूति बराबर हो सकती है। ये सत्यता को दर्शाई। अगर आत्मा ऐसा नहीं होता तो ये अनुभूति कल्पित हो जाती है। जैसा अनुभूति में अभेद आत्मा आता है, ऐसा आत्मा है इसलिए इसकी अनुभूति सही है, वास्तविक है। तो वहां भेद प्रभेद की बात बीच में लगानी नहीं है, वो गौण कर देनी है, उसको वहां लक्ष्य में लेना नहीं है। अब ये चर्चा में तो इस बात का स्पष्टीकरण चलता है कि कौन सी बात प्रयोजन की और कौन सी बात जानकारी करने की, ऐसा दो विभाग कर लेना। तत्व के अभ्यास करने वाले मुमुक्षु जीव को ज्ञान की प्रवृत्ति में, तत्व ज्ञान की प्रवृत्ति में दो भाग में अपने विषय को बांटना है, खतावनी करना है। कौन सी चीज जानकारी की है और किसकी, कौन सी चीज अवलंबन करने के लिए प्रयोजनभूत है, ये दो बात अलग अलग जहां तक समझ में नहीं आएगी वहां तक मुख्य गौण करने की जो पद्धति है वो पद्धति बराबर नहीं आएगी। और किसको मुख्य करना किसको गौण करना ये नहीं समझ में आता है, तो जिसको गौण करना है उसको मुख्य कर देंगे। तो जैसे यहाँ कहेंगे कि आत्मा अविशेष है, अविशेष मैंने गुण के भेद उसमें नहीं है, तो बहुत से गुण है आत्मा में, तो आत्मा में तो अनंत गुण है, आत्मा में अनंत गुण है ऐसा भेद भी है, और अनंत गुण का एक रूप ऐसी अभेदता भी आत्मा है। अब जब दो प्रकार है वो परस्पर विरुद्ध है क्या कि नहीं है, जब वस्तु का स्वरूप विरोध नहीं है तो उसका ज्ञान में विरोध कैसे होगा। तो भेद को गौण करके अभेदता को साधने में आता है। क्यों नहीं में विरोध नहीं कि एक ही वस्तु में दोनों पाया जाता है, भेद और अभेद दोनों एक पदार्थ में है कि नहीं। जब एक पदार्थ में है तो भी पदार्थ में विरोध नहीं होता, तो उसको जानने वाले ज्ञान में विरोध कहां से आएगा। इसलिए विरोध आपस में होता नहीं, निश्चय और व्यवहार में विरोध होता नहीं है, ऐसी बात है। बोधस्पृष्टत्व आदि भाव और भूतार्थ है अवलंबन के योग्य नहीं है और अवलंबन के विषय में भी नहीं देखा जाता, नहीं पाया जाता, इसलिए यह अनुभूति हो सकती है, इसलिए ऐसा वेद अनुभव हो सकता है। इस बात को दृष्टांत से प्रकट करते हैं। अब इस बात को हम दोनों पहलू से आचार्य महाराज कहेंगे कि हम स्पष्ट करेंगे। जैसे कमलिनी पत्र या जो कमल के पत्र होते हैं वो जल में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है और सत्यार्थ है। क्या कहा? संयोग दृष्टि से देखे तो जो कमल का पत्र है वो पत्ता 24 घंटा पानी पर पड़ा रहता है, तो पानी का संयोग 24 घंटा है, उसको पानी से स्पर्शित है, क्योंकि पानी पर तो वो तीरता है, पड़ा है, पानी नहीं स्पर्शता है, वो बात वहां दिखने में आती नहीं है, तो उस बात से ठीक है, पड़ा है पानी पे। तथापि जल से किंचित मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना और भूतार्थ और सत्यार्थ है। तो इस पत्ते को उठा लो, आपको बिल्कुल भीगा दिखेगा नहीं, कोरा ही कोरा मालूम पड़ेगा। आप उठा लो उसको हाथ में, उठाने को जाओगे तो अपनी अंगुली भीगी हो जाएगी, हाँ, लेकिन पत्ता 24 घंटा रहने पर भीगा होता नहीं है, वो कोरा ही कोरा रहता है, ऐसा उनका स्वभाव है, अलिप्त रहने का उसका स्वभाव है। जल कमल वत कहते हैं कि नहीं, अन्यमत में ऐसी तो बात आती है कि संसार में कैसा रहना कि जल कमल वत रहना, कुटुंब में परिवार में संयोग में रहते कैसा रहना कि जल कमल वत रह जाना, स्पर्श ना भीतर से मत रखना, ऊपर ऊपर से सब संबंध रख लेना, क्या ऊपर ऊपर से सब संबंध रखना, अंदर से कोई संबंध नहीं रखना, अंदर से काट देना, पूरा पूरा काट देना, अंदर में कुछ नहीं, मैं एक आत्मा हूं, दूसरे भी आत्मा है, परिभ्रमण के चक्कर में योग संयोग बैठ गया है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, नहीं। न किसी से लेना है न किसी से देना है, ऐसी बात होनी चाहिए। जब तक कोई आपत्ति नहीं, वरना तो दुख इतना होगा कि दुख का कोई पार रहने होने वाला नहीं। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है कमलिनी पत्र का, 24 घंटा पानी के संयोग में है, संयोग दृष्टि से पानी पर पड़ा है इसलिए पानी को स्पर्शता है, उनके स्वभाव से देखे तो पानी को बिल्कुल स्पर्श करता नहीं। उसके कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ और असत्यार्थ है। ठीक इसी प्रकार तो दृष्टांत है, अब सिद्धांत कहेंगे कि अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बदस्पृष्टता भूतार्थ है सत्यार्थ है। क्या कहते हैं? अनादि से आत्मा कर्म संयोग में कर्म से बंधा हुआ मालूम पड़ता है, तो संयोग दृष्टि से देखे तो उसका कर्म का संयोग है, वो बात सत्य है, ऐसा है ही नहीं, ऐसा संयोग दृष्टि से भी ऐसा नहीं है, सो बात नहीं है, वो तो है, ऐसा है, फिर भी ऐसा होने तथापि इसको गौण करना है। क्या ऐसी योग्यता को, ऐसी अवस्था को गौण रख करके अभी एक नया ज्ञान करना है। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य ऐसा जो आत्म स्वभाव, ऐसा स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्धता, स्पष्टता, बद्ध स्पष्टता, अभूतार्थ और असत्यार्थ है। जब हम हमारा इस आत्म स्वभाव को समीप जा करके, क्या लिखा, स्वभाव समीप जा करके, मैंने स्वभाव को दूर मत देखना, अपने निज परमात्मा को दूर मत देखना, मैं ही हूं ऐसा लेना, तो उसका समीप जाना मैंने उसके के साथ अभेदता साधना, मैं ऐसा ही हूं। कर्म संयोग अनादि से है लेकिन अनंत काल रहने वाला नहीं, और मेरा जो स्वभाव है वो अनादि अनंत है। जो कर्म का बंधन स्पर्श है वो मर्यादित है, और मेरा जो स्वभाव है वो अमर्यादित है, मर्यादित नहीं है किंतु अमर्यादित है। तो अब तो मुझे मेरे स्वभाव को समीप जा करके उसका अनुभव करना है, और जो योग्यता कर्म का बंधन वाली है उसको गौण करके, यहाँ उसमें वो है ही नहीं स्वभाव में, और वास्तव में स्वभाव में है भी नहीं, ऐसा स्वभाव का अनुभव करना है। तो ऐसा स्वभाव का अनुभव करने से प्रयोजन की सिद्धि होती है, यही कारण से इसका अनुभव आचार्य महाराज कराते हैं उपदेश में, और विशेष नहीं।